ओम शांति। मैं यही कहूंगी कि हम राता जी के मुखारविंद से सुनना चाहेंगे कि हम सब कैसी तैयारी करें और क्या तैयारी करें। इतना ही कह करके मैं यहीं पर अपने को विराम देती हूं। ओम शांति।
ओम शांति। उन्होंने एक बात कही, 61 से मैं ज्ञान में हूं, परंतु उसके पहले बाबा का परिचय मुझे 1952 से मिला हुआ था हमारे लौकिक माता जी के कारण, और 52 से 61 तक बाबा का मैं सहयोगी बच्चा रहा, और 61 से आज तक राजयोगी बच्चा हूं। यही परिचय है। कल आप अव्यक्त मुरली सुनते थे तो मुझे एक बाबा ने जब टीचरों को एक प्रश्न पूछा कि आप जानते हो बाबा टीचरों को क्या कहते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और बाद में बाबा ने कहा कि बाबा टीचरों को गुरु भाई कहते हैं। ये आपने कल सुना भी सही, परंतु जब ये बात सुनी तब मैंने कईयों के सामने देखा कि बाबा ने यही बात पिछले सीजन के अव्यक्त मुरलियों में भी कहा था कि बाबा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। हम सुनते बहुत है, सुनते बहुत है, परंतु क्या होता है, जो दो कान दिए हुए हैं ना भगवान ने, तो एक कान से जो जाता है वो दूसरे कान से निकल जाता है। आपको मालूम होगा बीरबल के जमाने की कहानी है कि एक तीन खिलौने थे, और उसको खिलौने बनाने वाले ने पूछा कि इस खिलौने की कीमत क्या होगी, तो बीरबल ने क्या किया कि एक कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया, उसकी कीमत कितनी बताई, जीरो बताई। दूसरी खिलौने में डाला कान में तो मुख से निकला तो उसका एक रुपया बोला, और जो जिसका दूसरे में एक कान में डाला और दूसरा पेट में चला गया उसके लिए कहा उसका 1 लाख रुपया। हम लोग जो वही खिलौने हैं जो एक कान से जाता है, 99% जो है वो दूसरे कान से निकल जाता है। और इसलिए हमने देखा कि कल बाबा ने जो गुरु भाई कहा हुआ है, ये बात पिछले सीजन में भी टीचर्स के लिए कहा था, परंतु ना टीचर्स को याद रहा ना अपने और बहन भाइयों को भी याद था, शायद कईयों को याद हो तो मुझे मालूम नहीं है, परंतु इसका कारण यही है कि पिछले सीजन में हमको बाबा ने बहुत कुछ काम दिया हुआ था, बहुत सी बारी बातें कही हुई थी। पिछले सीजन में बाबा ने 2 बार एक प्रश्न पूछा हुआ था कि आप बच्चे अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, वर्तमान जिस प्रकार से आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसके आधार पर आप जानते हैं 4 प्रकार की मालाएं हैं, एक है 9 लाख की माला है, दूसरी 16,000 की है, तीसरी 100 की है, और चौथी है 8 की, टोटल हो जाता है 9,16,108। इन मालाओं में से आप कहाँ आएंगे, 9 लाख की माला में तो जरूर आएंगे, परंतु उसके बाद क्या, उसके आगे का पुरुषार्थ 16,000 या उनसे आगे का 100 का या उनके आगे का 8 का जो पुरुषार्थ करना है, तो आप समझते हैं कि आप जो वर्तमान में जो पुरुषार्थ कर रहे हो या अब तक जितना पुरुषार्थ किया इसके आधार पर आप 8 की माला में आ सकेंगे। इसलिए बाबा ने अपने वर्तमान के पुरुषार्थ के बारे में जांच करने के लिए कहा हुआ है। ऐसे ही बाबा ने पिछले सीजन में प्रश्न मुरली में भी प्रश्न पूछा था, और मोहिनी बहन जब हमारी, आप जानते हैं मोहिनी बहन, वो बाबा के पास गई थी तो बाबा ने उनको पूछा था कि बच्चे, मेरे बच्चे एवर रेडी है, तो मोहिनी बहन ने कहा कि ये तो प्रश्न का जवाब जो है वो दादी दे सकती है, मैं तो अपने तरफ से कह सकती हूँ कि हाँ बाबा मैं एवर रेडी हूँ, जब भी आप कहो, जो भी कहो, मैं करने लिए तैयार हूँ। और फिर बाबा ने दादी जी को वहां पर सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, और बाबा ने दादी जी को पूछा, तो दादी जी बहुत अच्छे वकील भी है और इन्होंने हम सबकी आबरू रख दी, अन्य तो बाबा के सामने हम फेल हो जाते। दादी ने कहा कि हाँ बाबा आपके सभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रेडी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एवर रेडी है। इस प्रकार से कहकर के सबको एवर रेडी की कैटेगरी में रख दिया, चाहे पुरुषार्थी में, जैसे कल बाबा ने कहा कि 1-8 की भी माला होती है, 100 की भी माला होती है, 16,000 की भी हो सकती है, यहाँ 9,000 की माला के भी पुरुषार्थी हो, उस प्रकार के भी एवर रेडी हो, कैसे भी हो। इस प्रकार से पिछले साल मुरलियों में, मतलब बाबा ने इस प्रकार की बातें कही हुई थी। और उसी प्रकार से बाबा ने विनाश की तैयारियां करने के बारे में भी बाबा ने हम बच्चों को सावधानी दिया कि आपसे बच्चे अभी आप समय बहुत रहा नहीं है, इसके लिए समय करने का पुरुषार्थ करिए विनाश की तैयारियां। और उसके कारण बाबा ने पिछली सीजन की मुरली में कहा था कि आप बच्चों को अभी जो समेटने की शक्ति जो है, आप जानते हैं योग के अंदर 8 शक्तियां मिलती है, निर्णय शक्ति मिलती है, सहयोग की शक्ति आदि 8 शक्तियां जानते हैं आप, उसमें एक है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, ये समेटने की शक्ति अभी भी साकार मुरली का 20-25 दिन पहले जो सार था उसमें भी लिखा हुआ था कि कछुए के माफिक जो है अभी अपना कछुआ जैसे अपने जो इंद्रिय जो होता है उसको समेट करके समेट लेता है ना, इस प्रकार से समेटने का पावर टू विड्रॉ जो है, मतलब इस प्रकार से अपने आप को, अपने अंगों को, अपने इंद्रियों को, अपना कारोबार को इस प्रकार से समेटने का प्रयत्न कीजिए ताकि इस विनाश के टाइम पर ये सारी बातें जो है वो आपको याद नहीं आए। ये समेटने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाबा ने तो कहा 1 साल हो गया, तब तक उसके पहले विनाश की तैयारी हम नहीं पूर्ण रूप में कर सकेंगे, समेट नहीं सकेंगे तो क्या होगा, अंत समय में वो सब याद आएगा। हमने ज्ञानामृत के इस अगले महीने के आर्टिकल में यही बात लिखी हुई है समेटने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कि समेटना और अंत समय पर परमात्मा याद आए। जैसे आप जानते हैं ब्रह्मा बाबा ने भी इतना सुंदर अपना कारोबार समेट लिया था, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, अलौकिक समय पर भी बाबा को संस्था यज्ञ याद नहीं आया, कुछ नहीं याद आया। लास्ट में आप जानते हैं अंतिम महावाक्य उनके मुख से यही निकला कि शायद मैं बाबा के पास जा रहा हूं। इतने निश्चिंत होकर के हम बाबा के पास जाने का उन्होंने अपना अंतिम श्वास उस प्रकार से छोड़ा और अव्यक्त हो गए। हम उस प्रकार से निश्चिंत होकर के ऐसा ही हमारा कारोबार समेटा हुआ हो और हमको बाबा याद आए और कुछ ही याद नहीं आए, इस प्रकार का समेटने की शक्ति का प्रयोग किया है। एक प्रश्न है पिछले साल की मुरली के अंदर कि यह समेटने की शक्ति का योग में 8 शक्तियां तो मिलती है और भी कहीं से अनेक प्रकार की बातें प्राप्त होती है, विकर्म विनाश होते हैं, सब कुछ होता है, परंतु समेटने की शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अंत में परमात्मा याद नहीं आएगा। कई लोग क्या करते हैं, भगवान अंत में याद आए इसके लिए अपने बच्चों का नाम नारायण रख देते हैं या और कृष्ण रख देते हैं ताकि ऐसा समझे कि खुद बच्चे को याद करें, भगवान में अक्कल नहीं है इसलिए वो समझेंगे मुझे याद कर रहा है। हम लोग कई बार ऐसा समझते हैं कि भगवान में अक्कल नहीं है और इसलिए अपना मतलब के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए कई लोग जो है अज्ञान काल में आप जानते हैं इनके अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रख देते हैं ताकि अंत समय में खुद बच्चे को याद करेंगे और भगवान समझेगा मुझे याद किया हुआ है और इसके कारण उस टाइम पर मदद कर देगा, इस प्रकार का कारोबार करते हैं। अंत समय में भगवान याद आए बहुत कठिन बात है। पश्चिम की दुनिया के बहुत नामी ग्रामी विद्वान फिलोसोफर हो गए सोक्रेटिस, ग्रीक फिलोसोफर में सोक्रेटिस का नंबर 1 है, बहुत प्रसिद्ध नंबर 1 फिलोसोफर हो गए और इन्होंने ही प्लेटो आदि, प्लेटो ने भी एरिस्टोटल आदि को जन्म दिया और इस प्रकार से बहुत अच्छे नामी ग्रामी फिलोसोफर, और उनको भी इन्होंने सबको फिलोसॉफी सिखाई इसलिए सरकार ने उसको मृत्यु दंड दे दिया था और उसको जेल में रखा हुआ था, सभी शिष्य उनके सामने बैठे हुए थे और जो जेलर जो था उसने आकर के विष का, पॉइजन का एक ग्लास आकर के दिया, कहा आप पी लो। उसने पॉइजन भी पी लिया था और पॉइजन पीने के बाद उसकी इफेक्ट जो है शरीर पर होने लगी थी, पांव के नीचे का पांव और ऊपर का जो अंग जो है वो सारा ही अंग जड़ हो गया था, मृत्युवश हो गया था, ऊपर का ही थोड़ा पोर्शन जब जिंदा था। उस टाइम पर उनके शिष्य प्लेटो ने सोक्रेटिस को पूछा कि आप तो अभी शरीर छोड़ रहे हैं, ये आपकी अंतिम अवस्था है, इस अंतिम अवस्था में आपको कुछ कहना है, तो सबने तो समझा कि ये अंतिम अवस्था में कुछ और कुछ अच्छा संदेश दे करके जाएंगे। इसके बदले में सोक्रेटिस जो है उसने अंतिम अवस्था में कहा कि मेरी युगल, मतलब उसकी युगल का नाम था जयंपति, जयंपति को कहना कि हमने पड़ोसी से 3 मुर्गियां उधार ली थी, वापस दे दें। माना क्या समेटने का पुरुषार्थ इतना नहीं किया था, इसके कारण मरने समय पर क्या याद आया? हाँ, भगवान याद नहीं आया, परंतु क्या याद आया? अपनी युगल याद आई। और युगल से क्या कहने का था कि तीन मुर्गियां पड़ोसी से जो लिया हुआ है वो उनको वापस दे दे। हमारा अंतिम समय जब आएगा, हाँ, तब हमारा मन मुख से भी क्या निकलेगा हमको क्या मालूम। क्या होता है, कंप्यूटर, आज के जमाने में कंप्यूटर है, यहाँ तो आज के जमाने में टेप रिकॉर्डर है, उसको आप रिवर्स कर सकते हो। हाँ, क्या बोला, समझो कल के बाबा की मुरली है, बराबर नहीं सुनी हुई होंगी, टेप रिकॉर्डर किया हुआ है, टेप रिकॉर्डर के द्वारा दोबारा सुन सकते हो। यहाँ कोई बात रह गई हो तो फिर आगे, फिर रिवर्स करके फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तो समय ऐसी चीज है, समय को आप पीछे दोबारा नहीं लेके जा सकते हो। समय हमेशा ही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, फॉरवर्ड मार्च ही करता रहता है, आगे ही बढ़ता रहता है। समय को पीछे करके पीछे की बातें जो हुई है, पूछे की पीछे की जो बातें जो हुई है उसके बारे में, उसमें करेक्शन करने का आपको समय मार्जिन नहीं देता है। जो भी बात हुई वो हो गई, उसके बाद आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। पिछला कार्य जो भी हुआ, जो भी हो गया, अब तक जितना किया वो इतना ही रहता है। इसलिए आप पीछे को कुछ नहीं कर, पीछे में कोई भी बात का परिवर्तन नहीं कर सकते, आगे का ही भविष्य आप अपना बना सकते हो। और इसलिए समेटने की शक्ति का, कि अंतिम समय में क्या याद आएगा हमको, अंतिम समय में भगवान याद आएगा, ये आप रोज एक प्रयोग करके देखिए। आप जो नींद करते हो ना, ये भी एक मिनी अंतिम अवस्था है, मिनी सैंपल है, रिहर्सल है। क्योंकि आप जानते हैं नींद में क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है, शरीर भी छूट जाता है, उसके बाद क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है। तो नींद जो है उस टाइम पर आत्मा अंदर ही रहती है, शरीर चलता रहता है, हृदय चलता रहता है, बाकी सारा कारोबार चलता है। उस समय पर अंतिम नींद के, नींद में आप जाते हो उस टाइम पर आपको क्या याद रहता है? आपको क्या उस टाइम पर शिव बाबा याद रहता है? आज भी आप नींद करो तो आप देखना अपने आप की नींद की उस अंतिम अवस्था के समय पर आप याद रखना 95% क्या 99% भाई बहनों को उस टाइम पर बाबा याद नहीं रहता है। और ही बाबा को भूलते हैं तभी नींद आती है। एक भाई को मैंने पूछा कि आपको नींद के समय पर आप क्या करते हो, कहा मैं कहानियां पढ़ता हूँ। मैंने कहा बाबा को क्यों नहीं याद जाते, मुरलियां क्यों नहीं पढ़ते? तो कहा मैं मुरलियां पढ़ता हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती, बहुत भारी हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अंतिम समय पर परमात्मा की याद आए, ये बहुत कठिन बात है। और बाकी विनाश का समय जो है वो तो कभी भी आ सकता है। आज के अखबार में भी कल जो है भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो है, इन्होंने भी यही कहा हुआ है कि अगर कोई राष्ट्र जो है हमको ज्यादा कुछ कहेगा करेगा हमारे साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार, तो हम भारत जो है एटम बम चलाने में देरी नहीं करेगा हमारे पास। क्योंकि वो तो जानते हैं, इनको कहते ही है मिसाइल मैन। हाँ, भारत को मिसाइल युग में ले जाने के लिए निमित्त ये अब्दुल कलाम बने हुए थे। तो इन्होंने ही कह दिया, कल क्या कहा, आज के अखबारों में सभी में वही छपा हुआ है कि राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत के सामने कोई, कोई भारत को किसी के साथ सामना करना पड़ा, कोई बात ऐसी बन गई तो भारत एटम बम इस्तेमाल करने में देरी नहीं करेगा। पिछले साल का ही देख लीजिए, बाबा ने जब से कहा हुआ है समेटने की शक्ति और विनाश की तैयारियां जो होती है उसके लिए तैयारी करो, उसके पहले पिछले साल की ही बात देख लीजिए। पिछले एक साल में क्या क्या हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, आप सब जानते हैं कारगिल का युद्ध हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो है कश्मीर के बॉर्डर पर हुआ। अगर कारगिल के युद्ध के समय पर भी दोनों नेताओं जो है, दोनों देश के नेताओं की बुद्धि अगर बिगड़ती, हाँ, कईयों ने कहा था भारत सरकार को भी आप एटम बम यूज करो, मुजरफ को भी कईयों ने कहा आप एटम बम यूज करो, अगर एटम बम यूज करते तो क्या होता, हम यहाँ बैठे हुए होते क्या, विनाश आ गया होता। फिर दूसरी बात क्या क्या हुई, दूसरी युद्ध देखिए, इसराइल और अरब दोनों के बीच में भी झगड़ा काफी हो गया, इसराइल की टैंक्स आदि जो भी है लश्कर जो है अराफत या घर के आजू बाजू चारों तरफ उसको घेर लिया था और उसको खत्म करने के लिए, और अरब लोग भी तैयार हो गए थे युद्ध करने के लिए। हाँ, बहुत कुछ हो सकता था, परंतु दुनिया के और जो नेता हैं जो थे, इन्होंने इनको रोका और कहा कि नहीं यार, अराफत को छोड़ दो, आप शांति रखो, और इसलिए युद्ध नहीं हुआ। 11 सितंबर को आप जानते हैं अमेरिका में क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर विमानों ने वहां धक्का लगाया और दोनों बिल्डिंग गिर गए। और उसके बाद क्या हुआ, अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका वालों ने बॉम्ब आदि गिराए। उस टाइम पर रशिया शांत रहा, अगर रशिया शांत नहीं रहता और आगे बढ़ता तो क्या होता। और अभी भी देख लीजिए, अभी भी सदाम हुसैन जो है उसके सामने, इराक के सामने अमेरिका युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी रेजोल्यूशन पास कर दिया है, अमेरिका को पूर्ण रूप में सत्ता दे दिया है। तो विश्व का जो भी नजारा जो है, नक्शा जो भी है, वो यही है कि विनाश तो कभी भी हो सकता है। और एक बात पिछले वर्ष में बाबा ने कह दिया है कि जो भी होगा वो अचानक होगा, कह करके नहीं होगा। बाबा पहले से इंटीमेशन नहीं देगा, न ड्रामा पहले से इंटीमेशन देगा, जो भी कुछ होगा अचानक ही होगा। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या हम अचानक के ये पेपर के लिए तैयार है? अचानक कुछ भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या तैयार है हम कि अंतिम समय की जो बातें जो होगी उसके लिए आप सब तैयार है? और उसके लिए तैयारी के लिए आपने क्या किया हुआ है? आपने अपना बाबा ने पिछले इसके पहले की मुरली में कहा था, अव्यक्त मुरलियों में, सफल करो सफल करो सफल करो, ऐसे 3 बार कहा। हमने अपना तन मन धन सफल करने का प्रयोग शुरू किया या अपना अपने पास ही रखा है? एक हमारे गुजराती में एक कहावत है कि मेरा मेरा है और तेरा और मेरा सैयारा है, मतलब आपस में हम बाबा आपकी जो चीज है वो आप और हमारे बीच में हम बांट लेंगे, मेरा तो मैं मेरे ही पास रखूंगा। अपने ही पास सबने अपना रखा हुआ है। बाबा ने तो कहा हुआ है कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है खुदा, हम लोगों ने चेंज कर दिया है, हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे। ये करुण वास्तविकता है, आप भले हंसते हो अभी पर ये वास्तविकता है, हम सब यही करते हैं कि हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे, बाकी हाँ हम लोग तैयार है क्या? हम बाबा ने जितनी तैयारी किया है, विनाश की तैयारियां अचानक के रूप में हो जाए, हम उसके लिए तैयार है? या अभी तक ऐसे ही समझते हैं कि अभी तो बहुत समय तक कलयुग चलने वाला ही है, संगम युग चलने वाला ही है, हम मौज में रहे, हम उस प्रकार की विनाश की तैयारी के लिए तैयार है? हमने ज्ञानामृत के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं और जो बाबा जो कहता है, आप लोगों ने बाबा की मुरलियों में तो सुना ही होगा कि बंबई पानी में जाने वाला है, बराबर है, सुना है सबने, पढ़ा हुआ है, देखो मैंने नई बात तो नहीं कही है ना। वो कैसे जाएगा बंबई जाएगा, माना जो सी पोर्ट है, जो समुद्र किनारे पर जो भी शहर है वो सभी जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे, बाबा तो एक बॉम्बे का नाम देते हैं, वो सभी जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? उसके लिए कि हम वैज्ञानिक लोग कहते हैं और कुछ नहीं, एटम बॉम्ब के युद्ध करो ना करो और कुछ बात है, परंतु 5 एटम बॉम्ब जो है आप उत्तर ध्रुव और 5 एटम बॉम्ब दक्षिण ध्रुव के ऊपर डाल दो, तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर पानी इतना बर्फ के रूप में जमा हुआ है, बर्फ इतना है जिसके कारण, जो बर्फ के वजन के कारण जो है ना, आइस इतना हो गया है कि जिसके कारण पहले पृथ्वी ऐसी सीधी थी, अभी पृथ्वी पहले सीधी थी, सतयुग त्रेता में सीधी थी, बाद में पृथ्वी जो है ना वजन के कारण ऐसी टेढ़ी हो गई है, और पहले 90 डिग्रीज का एंगल था पृथ्वी, ऐसे गिनती करो तो 90 डिग्रीज का था, अब ऐसा टिल्ट हो गया है, टेढ़ी हो गई है, 23.5 डिग्रीज का उसमें अंतर हो गया है, जिसके कारण सीजन आदि जो भी होती है उसके कारण होती है। कारण यही है कि ऊपर में वजन ज्यादा हो गया, जैसे कोई भी मनुष्य जो होता है उसके सिर पर बहुत वजन हो जाता है तो वजन से व्यक्ति जो है ना वो टेढ़ा हो जाता है, आप सबका अनुभव होगा, आप अपने सिर पर भी 10 किलो 15 किलो वजन रख दो तो फिर आप भी टेढ़े हो जाएंगे। इस प्रकार से पृथ्वी भी टेढ़ी हो गई है 23.5 डिग्रीज का। अब उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर पानी गिरेगा और एटम बम गिरेगा, तो जो पानी जो वहां जमा हुआ है वो पानी पिघलेगा, पानी हो जाएगा, बर्फ का पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो समुद्र का जो लेवल जो है, समुद्र का पानी का जो लेवल है, आप समुद्र तो सबने देखा होगा, कईयों ने शायद ना भी देखा हो, मालूम नहीं है। हमारे पास कानपुर के मोतीचंद जी आए थे, उस टाइम पर उनकी आयु 55 वर्ष की थी। जब मैं उनको बॉम्बे का समुद्र किनारा देखने के लिए लेके गया तो उसने कहा, रमेश भाई मैंने लाइफ में पहली बार समुद्र देखा है। और कहने लगे, समुद्र में इतना पानी होता है वो तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने नहीं सोचा था कि समुद्र में इतना पानी होगा। तो मैंने कहा, कितना पानी होता है? कहा, होगा थोड़ा कुछ, मतलब इतना पानी होता है मालूम ही नहीं था। तो आप लोगों ने समुद्र देखा होगा ना, तो समुद्र का जो पानी का लेवल जो है वो वैज्ञानिक लोग कहते हैं 96 से 100 फीट तक वो समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाएगा। इसके कारण समुद्र किनारे पर जो भी है, चाहे बम्बई है, उधर सिडनी है, मेलबोर्न है, जो भी देश है, मद्रास है हमारे पास, ये सब जारी, जो लंदन है, न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को जो है, लॉस एंजलिस आदि जो भी देश है, जो भी बड़े बड़े शहर है दुनिया के, वह सभी समुद्र किनारे हैं। और समुद्र किनारे जो देश है जो है, उसका पानी का लेवल इतना बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप उसके आधार पर आगे का सोचिए कि पानी अगर इतना हो जाए, 96 समुद्र के जो जितने भी हार्बर्स है, बंदर है, जो भी जहां से पानी के जहाज के द्वारा कारोबार होता था, वो सारा ही ठप हो जाएगा। दुनिया की 90% रिफाइनरीज जो है, जहां से क्रूड ऑयल से पेट्रोल और केरोसिन आदि बनता है, 95% पेट्रोल की रिफाइनरीज जो भी है, क्योंकि पेट्रोल जो निकलता है बहुत करके सभी जगह पर समुद्र के अंदर से ही निकलता है। आज सुदाम हुसैन के सामने क्यों अमेरिका लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ है? क्योंकि उनके पास ऑयल रिजर्व्स बहुत है। तो ऑयल इतना महंगा हो जाएगा क्योंकि सभी रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी, पानी के जहाज चल नहीं सकेंगे। बम्बई नहीं होगा तो बम्बई के द्वारा, बम्बई के किनारे पर 2 रिफाइनरी है, ऐसे रिफाइनरी सब बंद हो जाएंगी। समुद्र का समुद्र के द्वारा जो भी व्यवहार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है, आज ग्लोबल ट्रेड जो हो गया है, सृष्टि एक ग्लोबल विलेज बन गई है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा जो है वो पानी के जहाज के द्वारा ही होता है, वो सब बंद हो जाएंगे। हाँ तो फिर क्या होगा? पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो हवाई जहाज भी बंद हो जाएगा। आज हवाई जहाज पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। आज गाड़ियां जितनी भी है भारत के अंदर, रेलवे जो है वो सभी डीजल इंजन के द्वारा ही चलती है, बहुत कम जगह पर स्टीम इंजन के द्वारा गाड़ियां चलती है। डीजल ही नहीं मिलेगा, पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो ना आप कार में आ सकेंगे, ना आप ट्रेन का उपयोग कर सकेंगे, ना आप हवाई जहाज का उपयोग कर सकेंगे, कुछ आपको काम में नहीं आएगा। क्या कर सकेंगे आप? गाड़ियां ही नहीं चलेंगी तो पेट्रोल ही नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जो है, व्यापार जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, वो भी ट्रांसपोर्ट आदि सब बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? दवाइयां ही नहीं मिलेंगी। एक छोटा सा एक ऐसी का एग्जाम्पल बताऊं, कईयों को डायबिटीज होता है, डायबिटीज ऐसा है और राज रोग है, लाइफ टाइम का रोग है, और इसके लिए रोज जो है ना डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई गोलियां लेनी पड़ती है, ज्यादा हो जाए तो इंसुलिन लेना पड़ता है। अब दवाइयां ही नहीं मिलेंगी तो फिर क्या करेंगे डायबिटीज वाला, क्या कर सकेंगे? कईयों को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए उसकी गोलियां लेनी पड़ती है, ना ब्लड प्रेशर की गोलियां मिलेंगी, ना डायबिटीज की गोलियां मिलेंगी, ना और प्रकार की बीमारियों की दवाइयां जो भी है। हाँ, जितना भी विज्ञान आगे बढ़ा हुआ है, कल भी बाबा ने कहा कि बच्चों ने विज्ञान के जो भी इन्वेंशन हुए उसका अच्छा प्रयोग उपयोग किया हुआ है, तो उस टाइम पर विज्ञान के साधन ही काम में नहीं आएंगे, आपका कंप्यूटर भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि बिजली नहीं चलेंगी, बिजली के बिना क्या करेंगे आपके कंप्यूटर? आपको टेप रिकॉर्डर में बिजली नहीं मिलेंगी, आपको बैटरी के सेल चाहिए, थोड़े दिन तक बैटरी का सेल मिलेंगे जो आपके पास स्टॉक में होगा, उसके बाद बैटरी के सेल ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप? न टेप रिकॉर्डर चलेगा, न कंप्यूटर चलेगा, न वायरलेस, न रेडियो आदि कुछ नहीं चलेगा, कैसे होगा, कैसा जीवन होगा? आप सब सोचिए, ऐसी भयानक परिस्थिति के अंदर रहने के लिए तैयार है हम? उसकी तैयारियां के लिए हम तैयार है? ऐसी परिस्थितियां आएंगी उसके कारण क्या हो जाएंगे आपस में? हाँ, क्या होगा? पैसा होगा आपका, पर तो बैंक में होगा, आपको बैंक पैसा नहीं देंगे, क्योंकि बैंकों ने पैसा जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज को उधार दिया हुआ है, लोन में दिया हुआ है, सब इंडस्ट्रियां ही बंद हो जाएंगी, तो बैंक को पैसा वापस नहीं मिलेगा। आपको पैसा, आपके पैसे आपके पास करोड़ों रुपया हो, बैंक में हो या शेयर्स में हो या कुछ भी हो, वो पैसा ही आपको काम में नहीं आएगा। आज अर्जेंटीना में ऐसा ही हो रहा है, थोड़े समय के बाद भारत में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में भी सरकार खर्चा बहुत करती है, आमदनी कम है, जिसको हमारे करियर जी जानते होंगे, डेब्ट ट्रैप, कर्जे का जो उसमें पिंजरा है, उसमें भारत सरकार भी फंसती जा रही है, और उसके कारण अर्जेंटीना में ऐसा हो रहा है। अर्जेंटीना में लोगों के पास करोड़ों डॉलर जो इन्होंने रखा हुआ था बैंक में, वो ऐसा ही रहा हुआ है। आप बैंक से वहां हफ्ते हफ्ते का होता है, एक हफ्ते में 200 डॉलर ही ले सकते हैं, उसके अलावा ज्यादा आपको आपकी बैंक आपको देंगी नहीं। पैसा ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? आपके पैसे बैंक में पड़े हुए होंगे परंतु आप काम में नहीं लेंगे, उस टाइम पर कहेंगे चलो हम अभी सफल करें। सफल कैसे करेंगे? बैंक से पैसा ही आपको 200 डॉलर जैसे अर्जेंटीना में मिलता है ऐसा मिलेगा, आप क्या सफल करेंगे? हाँ, मकान बेचेंगे तो लेने वाला पैसा कहां से लाएगा? हर एक ने पैसा अपना बैंकों में रखा हुआ होगा, तो बैंकों में जब पैसा रखा हुआ होगा वो पैसा ही नहीं छूटेगा तो कहां से आएगा? आज भी देखिए, गुजरात के अंदर कितनी बैंक कोऑपरेटिव बैंक डूब रही है, आंध्र प्रदेश में चार मीनार जैसी कोऑपरेटिव बैंक डूब गई, गुजरात में अभी अभी पिछले हफ्ते में साबरमती कोऑपरेटिव बैंक डूब गई, माधवपुरा डूब गई, इसने कितना भी डूब गई, अभी तो यूटीआई जो है वो डूब रही है, सरकार ने इसको 1600 करोड़ रुपया दे करके थमाया हुआ है, मदद किया हुआ है, सपोर्ट दिया है। जब सरकार के पास ही पैसा नहीं होगा तो यूटीआई भी क्या करेंगे? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा? आपको क्या मदद करेंगे? आपको इस प्रकार से आपके पास जेवर भी होगा, जेवर लेने वाला कौन होगा, कौन पहनेगा? शादियां आदि में जाने के लिए शादियां आदि नहीं हो सकेंगी, प्रोग्राम ही नहीं बन सकेंगे तो क्या होगा? आपके पास जेवर होते हुए भी आपको कोई काम के नहीं आएंगे। एक तो नेचुरल प्रकृति की समस्याएं इतनी आएंगी, इतनी प्राकृतिक समस्याएं जो आएंगी उसके लिए हम तैयार है? आज तो क्या होता है, थोड़ा टाइम चलना होता है ना, वो भी नहीं चल सकते हैं, सबका पांव आदि जो भी है ना, कार आदि के कारण, एरोप्लेन ट्रेन आदि के कारण खत्म हो गए, बैलगाड़ियां नहीं है, बड़े शहरों में तो विक्टोरिया आदि भी नहीं मिलती है, सब सारा ही कारोबार ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही चल रहा है, कार के द्वारा या टू व्हीलर स्कूटर आदि के द्वारा चल रहा है, पेट्रोल डीजल आदि कुछ मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे आप, कैसे चल पाएंगे? खाना ही नहीं मिलेगा। आज हमारे बॉम्बे के अंदर सब्जियां जो है वो 100 किलोमीटर दूर से आती है, बॉम्बे में कुछ पकता नहीं है, कुछ प्रकार का वहाँ गार्डन आदि कोई भी खेती नहीं है कि खेती करके कोई कमाई करके उसमें से गेहूं चावल आदि पैदा करे। 100 किलोमीटर दूर से नासिक से या यहाँ पर बलसार सूरत से सब्जियां आदि जो भी है वहां आता है, क्या करेंगे? इतने 1.5 करोड़ लोग है, उसको अनाज कहाँ से मिलेगा, खाना पीना कहाँ से खाएगा? और जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे लोग जो है वो लूटने का डेकोरेटिंग मतलब तोड़ना, जैसे अर्जेंटीना में अभी यही हो रहा है, पैसा नहीं है, जरूरत तो है, भूखा आदमी क्या करेगा? अर्जेंटीना के अंदर यही हो रहा है, दुकानें जो है बड़े बड़े स्टोर है उसको लोग जाकर के लूटते हैं, आप क्या करेंगे? पुलिस भी क्या करेंगी आपको? पुलिस खुद भी परेशान है, उसको भी पैसा चाहिए, और भ्रष्टाचारी पुलिस हो गई, रक्षक भी जहां भक्षक बन जाता है वो आपको रक्षक क्या मदद करेगा? सोचिए इन सब बातों के लिए कि हम ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार है। सामाजिक अव्यवस्था भी इतनी ही हो जाएंगी जिसके अंदर कोई भी प्रकार की आपको साधन नहीं मिलेंगे, इसलिए उस प्रकार का देखने के लिए समय आपके पास कहाँ है? आर्थिक अव्यवस्था भी इतनी ही हो जाएंगी। सारी दुनिया का कारोबार जो है कागजों के आधार पर बना हुआ है, कागज की नोटे हैं। आज से 15-16 साल पहले तापी नदी जो है सूरत के नजदीक में है, वहां पर फ्लड आया था। इतना फ्लड आया कि सूरत शहर के अंदर तापी नदी का पानी पहुंच गया। कईयों ने अपने पैसे जो है ना, यहाँ तो बैंक में रखे हुए होते, यहाँ तो लॉकर्स में रखे हुए थे। पानी इतना आया, और लॉकर्स बहुत करके जो है अंडरग्राउंड होते हैं, ऊपर में तो बहुत कम लोग बैंकों के होते हैं, अंडरग्राउंड थे। तो पानी इतना आया कि अंडरग्राउंड में जो भी लॉकर्स थे ना, उसमें सारा ही पानी से भर गए। 15 दिन तक जो है बिजली आदि कुछ नहीं था, पानी भी कैसे पंप से कैसे निकाले। 15 दिन तक पानी नीचे रहा। आप अपने प्रयोग करना, आप घर में 100 रुपये की नोट लेना और उसको 15 दिन तक पानी में रखना, फिर क्या हो जाएगा? 15 दिन तक पानी में रखो और उसके बाद क्या हो जाएगा? उस नोट का क्या हो जाएगा? और इस प्रकार से वहां 15 दिन तक जिनके पैसे 2 नंबर के पैसे हैं, जो भी जैसे भी होंगे, वो लॉकर में रखे हुए थे। 15 दिन के बाद जाकर के खोला तो क्या हो गया? कागज सब मिट्टी हो गया। हम पहले मिट्टी में मिल जाए, इसके पहले उनका धन जो है ना वो ही मिट्टी में मिल गया। फिर इस प्रकार से काफी नुकसान होता गया, इतना नुकसान हुआ। आर्थिक अव्यवस्था जो है उस प्रकार से ऐसी हो जाएंगी कि आपके पास जो है ना, कई करोड़पति जो है ना, हाँ, बाबा ने एक बार एक मुरली में कहा है, कई करोड़पति जो है ना वो रोडपति बन जाएंगे। और इसलिए ऐसी समस्या के लिए उसके पहले आपने अपना जो भी है उसको 2 बातें करने की है, एक तो समेटने का है और दूसरा सफल करना है। समेटा हुआ ही नहीं होगा तो सफल कहां से करेंगे? और आज भी यज्ञ जो है ना, कई बातों को लेता नहीं है। आज भी अभी मैं आया तो एक बहन ने कहा कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ। हमने कहा नहीं, हम ये बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। बाबा ने हमको खास कहा हुआ है, जब भी जैसे बहन जी ने बताया ना, वर्ल्ड रिन्यू स्पिरिचुअल ट्रस्ट का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, तो ट्रस्टी मैनेजिंग ट्रस्टी बनाने के बाद पहला पत्र मुझे ब्रह्मा बाबा ने यही लिखा कि बच्चा तुम याद रखना, ध्यान रखना, मेरी जिम्मेदारी माना बाबा की जिम्मेदारी का ध्यान रखना, क्योंकि बाबा ने कहा लेगा तू और देना मुझे पड़ेगा। लेगा तू क्योंकि ट्रस्टी के रूप में साइन मैं करता हूं ना रसीदों के ऊपर, जिन्होंने ट्रस्ट में पैसा दिया होंगे इन सब ने देखा होगा मेरी साइन होती है, सिग्नेचर होती है। तो बाबा ने कहा लेगा तू, पर किसके लिए? तुम तो ट्रस्टी है, मालिक कौन है? मालिक श्री बाबा है, तो वापस देने वाला कौन है? क्या मैं दूंगा? क्या मेरे पास तो ताकत भी नहीं है। देने वाला हाँ बाबा है, आप लोगों ने बाबा के लिए दिया है ना, यज्ञ में भी जो देता है, यज्ञ का भी मालिक कौन है? श्री बाबा ही है। यज्ञ ट्रस्ट आदि जो भी है इन सब का मालिक वही है। तो बाबा ने कहा बच्चे ध्यान रख, ऐसा लेना, मेरी जिम्मेदारी का ध्यान रख करके लेना। तो ऐसे अंतिम समय में यज्ञ भी क्यों लेंगे आपके पास? उस टाइम पर आप आएंगे, नींद से उठ करके जाग करके आएंगे, यज्ञ भी कहेंगे ऐसी फालतू जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? इसलिए ऐसी चीज के लिए चाहे जो भी है, अपना तन, अपना मन और अपना धन, इन सबको सफल करने के लिए ऐसे इस प्रकार की प्राकृतिक आपदियां होंगी, इस प्रकार की ग्रह युद्ध होंगे, ऐसे समय के लिए हम तैयार है? ऐसे समय की ईश्वरीय सेवा क्या होगी? आप वो भी सोचिए, क्या उस टाइम पे प्रदर्शनी हो सकेंगी? हाँ बहन जी ने कहा कि रमेश भाई ने प्रदर्शनी का इन्वेंशन किया। हाँ वो तो शांति के समय में प्रदर्शनी किया, अशांति के समय में प्रदर्शनी कैसे होगी? एक बार बॉम्बे में बहुत रायट्स हो गए थे, हिंदू मुसलमान के बहुत झगड़े हो गए, सरकार ने कर्फ्यू डाल दिया। कर्फ्यू 5 दिन तक लगातार कर्फ्यू रहा, हाँ 1 मिनट की भी छुट्टी किसी को बाहर जाने की नहीं दिया। 5 दिन तक हम सब अपने घरों में, हाँ घर जैसे कि जेल जैसा बन गया, और हरेक को अपने घरों में 5 दिन तक कंपलसरी रहना पड़ा। तब मुझे ख्याल में आया कि अब ऐसे 5 दिन के समय में, बाबा ने तो कहा है अंतिम समय में ईश्वरीय सेवा बहुत करनी चाहिए, अंतिम समय में तुम्हारी बहुत प्रजा बनेगी, परंतु जो वर्तमान के ईश्वरीय सेवा के साधन है, इस वर्तमान के ईश्वरीय सेवा के साधन के लिए वो साधन अंतिम समय के ऐसे विनाश के समय पर काम करने के लायक है या नहीं? कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे उस टाइम पर? कॉन्फ्रेंस होंगी, रिट्रीट होंगी, प्रदर्शनी होंगी, मेले होंगे, हेल्थ मेला आप कर रहे हैं, कितना 178 ऐसा नंबर का मेला अभी होने वाला है, और जगह पर संबलपुर में भी होगा, कई जगह पर होने वाला है। न मेला होगा, न प्रदर्शनी होंगी, न कॉन्फ्रेंस होंगी, न रिट्रीट होंगी, खाली क्या होगा? बाबा के घर जो भी है, कल बाबा ने कहा इसलिए तो बड़े बड़े बना रहे, अंतिम समय में आश्रय स्थान के लिए वो काम आएंगे, बाकी कुछ काम नहीं आएंगे। तो अंतिम समय की जो सेवाएं जो है, जो बाबा ने कल भी कहा मनसा सेवा, ऐसी अंतिम समय की ईश्वरीय सेवा करने के लिए, ताकि उस समय पर हमारी प्रजा बने, इस प्रकार की अंतिम समय की सेवा के लिए हम तैयार है? हम सब शांति के समय की ईश्वरीय सेवा के लिए हमारे पास साधन है, उसके लिए साधना क्या है वो भी मालूम है। साधन और साधना जो भी हमारे पास वर्तमान समय है वो शांति के समय के हैं। अंतिम समय की जो सेवाएं जो है, उस सेवा की विधि सीखने के लिए अभी हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। मैं यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों से प्रश्न पूछता हूँ कि मनसा सेवा जो कल भी बाबा ने कहा, वो अंतिम समय में वो इस काम में आने वाली है। बाबा ने कल पिछले सीजन की मुरली में कहा है अंतिम समय में मनसा सेवा, और दूसरा एक्सपीरियंस अनुभव कराने की सेवा करनी होगी। बाबा ने कहा है बहुत पिछले साल की मुरलियों में कहा है कि बच्चों ने वाचा की सेवा बहुत किया है, अन्य सभी प्रकार की सेवाएं बहुत किया है, अभी बच्चों को अभी अनुभव कराने की सेवा करनी चाहिए। एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, अनुभव कराने की ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए। क्या हमारे पास अनुभव कराने की ईश्वरीय सेवा के साधन है? हम उसके लिए तैयार है? हम मनसा सेवा के लिए तैयार है? उसकी विधियां आती है? हमारा इतना योग पावरफुल है? हम साक्षात्कार मूर्त ऐसे बने हुए हैं जो उस टाइम पर अंतिम समय में जब दूध, अभी तो घी दूध की नदियां बहती है, उस टाइम पर रक्त की नदियां बहती रहेंगी। एक कॉकरोच को देख करके डरते हैं, अभी एक बहन ने मेरे को कहा कि मैं बाकी किसी से नहीं डरती हूं, परंतु मैं चूहे से बहुत डरती हूं। कल भी एक ने बताया ना कि जो है ना, ये जो नेपोलियन जो है, नेपोलियन की बात कल किसी ने सुनाई थी, अगर नेपोलियन जो है वो इतना बहादुर था, कितना बहादुर था, तो बिल्ली से डरता था। और इसलिए साधन निर्माण करने होंगे, उसकी विधियां बनानी पड़ेंगी, और उस समय के लिए जो भी सूक्ष्म सेवाएं जो भी है, अनुभव कराने की जो सेवाएं जो है, वो उसके लिए तैयार होना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा। हम भाषण करने के लिए तैयार हैं, हम बाकी सब बातों के लिए वर्तमान की जितनी भी सेवाएं हैं वो सब कर रहे हैं, पर दूर समय पर क्या होगा? इतना बड़ा बारह बाबा को मिलने के लिए 20,000 लोगों का, कल भी 12-15,000 लोग जो संगठन था, ऐसे संगठन भी नहीं हो सकेगा, उस समय पर क्या करेंगे? और इसलिए उस समय की ईश्वरीय सेवा के लिए हम तैयार है? और याद रहे, ये जो भी होने वाला है सब अचानक, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से आपको कह देता हूं, अचानक ही होगा। आप जानते हैं 11 सितंबर को जो बिन लादेन आदि ने जो भी हवाई जहाज जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर फेंका, और उसके कारण मकान गिर गए, उसमें जो 4-5,000 लोग मर गए, उनको क्या मालूम था कि उस दिन ऐसा होने वाला है? अपना राम प्रसाद भाई जो है वो वहां न्यूयॉर्क में रहता है, और उसी बिल्डिंग में नौकरी भी करता है, 64th फ्लोर, 64वीं मंजिल पर वो काम करता था, और अचानक जो एरोप्लेन जो है उस मकान के साथ टक्कर खाया, वो मकान हिलने लगा, उसको लगा ये क्या हो रहा है, उसने कहा चलो उतर करके भागे, लिफ्ट बंद हो गई थी, 64 फ्लोर से नीचे आने का था उसके, वो एक कैबिन में बैठा हुआ था, एक डिपार्टमेंट का वो हेड था, दूसरे एक डिपार्टमेंट के हेड एक दूसरी एक बहन थी, उसने उसको कहा चलो बहन चलो सब हम लोग नीचे उतर जाए, भाग छोड़ के चले जाए, कुछ हो रहा है मकान को, वैसा कुछ टक्कर लगी हुई है, कुछ हो रहा है। वो बहन ने कहा कि मैं 5 मिनट के बाद आती हूँ, मेरा थोड़ा ये काम जो है ना, मैं काम पूरा करके आती हूँ। और वो राम प्रकाश भाई और उनके कलीग्स जो भी साथी जो है और जो असिस्टेंट, वो सब नीचे उतर के बाहर आ गए, और मैंने राम प्रकाश को पूछा उस बहन का क्या हुआ। 10 मिनट के बाद वो आने वाली थी, 10 मिनट के बाद वो नीचू नहीं आ सकी, वो वहां की वहां ही रह गई। हम बाबा को कहे बाबा हम बस 5 मिनट दे दो, हम 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे, अंतिम समय में 5 मिनट आपको नहीं मिलने वाली है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिरे, जो लाखों मनुष्य मर गए, वो तो आप जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में, क्या अमेरिका ने वो बॉम्ब डाले हुए थे, क्या अमेरिका ने पहले हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों को बताया था कि अभी मैं अमेरिका के ऊपर, हम अमेरिकन जापान के ऊपर ये एटम बॉम्ब डालने वाले हैं? हाँ, उस टाइम पर जो भी होंगे, हाँ, जिनका जन्म 45 से पहले हुआ होगा, आप अखबारों में किसी में आया था कि हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर अमेरिका एटम बॉम्ब डालने वाला है, ये मालूम था किसी को? हाँ, किसी को भी ये मालूम नहीं था। अंतिम समय में ऐसी बातें बनेंगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ अचानक होगा। और ऐसे अचानक के पेपर, एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, ये आप सब ध्यान से सुनिए। अचानक बाबा ने कहा हुआ, अंतिम समय में अचानक की एक छोटी सी परीक्षाएं होंगी, ये आपका फाइनल पेपर होगा। वो अचानक की परीक्षाएं जो अंतिम समय में होगी, वो आपका फाइनल पेपर होगा। और बाबा ने कहा है कि उस पेपर में जो फेल होंगे ना, वो चिंदीधारी बनेंगे, और जो पास होगा वो बिंदीधारी बनेंगे। मैं बाबा के सामने बैठकर के सुन रहा था, मैंने कहा बाबा ये चिंदी और बिंदी क्या होता है, मुझे मालूम नहीं है। तो बाबा ने कहा कि आपने झाड़ को बराबर नहीं देखा है, कल्प वृक्ष जो है ना, उसमें राम सीता को जो है ना एक चिंदी दिया हुआ, इधर बहने जो है हम राजस्थानी बहने इतना यहाँ पहनती है, और फिर इधर इतना तक लंबा होता है, और फिर पीछे पीछे बालों के अंदर वो बांध देती है। वो बाबा ने बताया कि वो चिंदी धारी है, वो त्रेता युग की निशानी है, और बिंदी धारी जो है, बिंदी तो आप लगाते हैं ना, तो बिंदी धारी है वो सतयुगी है। सतयुगी और त्रेता युगी की अंतिम परीक्षा जो हमारी जो होगी ना, वो 1 सेकंड की होगी। 1 सेकंड की परीक्षा जो होगी, उसमें जो पास होगा वो बिंदीधारी, वो सतयुगी बनेगा। मैं आपको एक लौकिक दुनिया का एग्जाम्पल दू, जब सौराष्ट्र जो था ना, वो सौराष्ट्र गुजरात में मिक्स हो गया, तो वहां के जो भी कलेक्टर थे, कई डिस्ट्रिक्ट को सरकार ने मिक्स कर दिए, तो कई डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर अलग अलग थे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट थे। अब बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो एक को कलेक्टर बनाना था, दूसरे को असिस्टेंट कलेक्टर बनाना, तो क्या किया जाए, एक कमेटी बनाई। हमारा गांव जो है भावनगर है, तो वहां के भावनगर और सीहोर के जो दोनों कलेक्टर को वो कमेटी वालों ने सामने बिठाया, और उनको नक्की करना था, उसमें एक को कलेक्टर बनाया जाए, दूसरे को असिस्टेंट कलेक्टर बनाया जाए, दोनों एक समान पद के अधिकारी थे, तो क्या किया जाए, परीक्षा क्या लिया जाए। तो ये कमेटी वालों ने बैठे बैठे ऐसे ही कहा कि जरा प्यून को, सिपाही को, क्या कहते हैं उसको, काम करने वाला जो होता है ना, हाँ, पहरे वाला जो है, उसको जरा बुलाइए। दोनों कलेक्टर सामने ही बैठे हुए थे, एक उठ करके बाहर जाकर के बुलाने के लिए गया, और दूसरा जो है बाजू में ही कलेक्टर का टेबल था, उसके ऊपर बैठा, और बुलाने के लिए, नौकर को बुलाने के लिए वो कॉल बेल होता है, वो बेल ऐसा दबाया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो बैठे हो वहां ही बैठो, जो बाहर गया उसको कहा आपको असिस्टेंट कलेक्टर ही बनना है। ऐसी अंतिम समय की परीक्षाएं इतनी सूक्ष्म होगी, आप समझेंगे भी नहीं कि हमारी ये परीक्षा हो रही है। ऐसी 1 सेकंड की परीक्षा होगी, और उस एक अंतिम समय की परीक्षा में जो पास हो गए वो सतयुगी बनेंगे, जो फेल होंगे वो त्रेता युगी बनेंगे। इतनी सूक्ष्म परीक्षा आएंगी, और बाबा ने उस मुरली में कहा भी है कि पास वही होंगे जिसका बहुत समय का अभ्यास होगा, जिनका बहुत समय का अभ्यास होगा वही अंतिम समय में पास होगा, नहीं तो फेल होगा। आपकी कर्म इंद्रियां आपको उस टाइम पर धोखा ही दे देंगी। आप चाहो मैं ये करूं पर आपकी कर्मेंद्रियां नहीं है आपको अलाउ करें। खाना ही पीना नहीं मिलेगा तो आपको कहीं को कहीं सब्जियां पसंद नहीं होती है, कहीं चीजें पसंद नहीं होंगी तो आपको और चीजें जो आपकी पसंद की वो मिलेंगी नहीं, तो आप खाएंगे क्या? शरीर निर्वाह कैसे करेंगे? तो इतनी परीक्षाएं छोटी छोटी बारीक इतनी मामूली सी परीक्षाएं आएंगी, सिविल वॉर्स होंगी, क्या होगा? मैं आपको बता रहा था कि बंबई में जब ये हुआ कर्फ्यू हुआ था 5 दिन तक हम घरों में बैठे रहे, कोई ईश्वरीय सेवा नहीं हो सकी, घरों में जो भी था वो ही काम में आया, बाहर जा ही नहीं सकते थे। इस प्रकार का अंतिम समय का जो परीक्षाएं जो होगी, पेपर जो होगा, क्या होगा? मैंने आर्टिकल लिखा उसके बाद उसमें मैंने सजेशन मंगाए थे, एक भाई ने हमको लिखा कि आपने तो भले कहा कि प्राकृतिक समस्याएं होंगी, आर्थिक समस्याएं होंगी, सामाजिक समस्याएं होंगी, परंतु एक और भी समस्या होगी। उन्होंने मेरा उसमें ध्यान खिंचवाया, उसमें लिखा कि अंतिम समय में अशुद्ध आत्माओं का भी इतना ही कारोबार होगा, क्योंकि आत्माएं शरीर छोड़ेंगी और नया गर्भ जो है माताएं गर्भ धारण करने के लिए तैयार नहीं होंगी तो जाएंगे कहां, वो अशुद्ध आत्माएं जाएंगे कहां? परम धाम का रास्ता बाबा ने खोला ही नहीं है, खुला रास्ता ही नहीं खुला हुआ है, नए माँ बाप मिलने वाले ही नहीं है, तो वो अशुद्ध आत्मा जाएंगी कहां? आज एक कॉकरोच से डरने वाले उस अशुद्ध आत्माओं से डरेंगे तो क्या होगा? हम तैयार है ऐसे अशुद्ध आत्माओं हमारे सामने आ जाए तो उसको फेस करने के लिए। बाबा ने अभी अभी कहा सभी अशुद्ध आत्माएं खराब नहीं होती, कहीं अच्छे भी होते हैं, कहीं अशुद्ध आत्माएं खराब होती है, अच्छे भी होते हैं, ऐसे अशुद्ध आत्माओं का उनका भी उद्धार करना, क्योंकि वो बेचारे तड़पते हैं। आप सबने किताबें नहीं पढ़ी हुई, हमने ज्ञान काल में पढ़ी थी, फ्रांस की एक बहन है उसने किताब लिखी हुई, उसमें उन्होंने हिप्नोटाइज करके कईयों लोग को कई आत्माओं को भेजा हुआ है, भूतकाल में कईयों को भविष्य काल में भी भेजा हुआ है। एलिजाबेथ रोज कुबलेर करके पश्चिम की दुनिया की साइकोलॉजिस्ट है, उसने बताया है कि कई आत्माएं जो अभी जो है उनको उसने भूतकाल में भेजा हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि 300-300 वर्ष तक वो अशुद्ध आत्माओं के रूप में घूमते रहे और अभी इन्होंने जन्म लिया हुआ है। तो एलिजाबेथ रोज कुबलेर ने इन्होंने पूछ करके उनका अनुभव के आधार पर लिखा हुआ है कि ये 20वीं सदी का जो अंतिम समय जो है और अभी का जो समय चल रहा है ना, वो सारे दुनिया का अब तक का जो इतिहास है इस इतिहास में सर्वश्रेष्ठ समय यही है, क्योंकि इसी समय पर आप अपना अगला भविष्य का जन्म प्रारब्ध बना सकते हो। और इसलिए 300-300 वर्ष तक अशुद्ध आत्मा के रूप में घूमने वालों ने भी शरीर लेकर के शुद्ध आत्मा बन करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके सत्यु की दुनिया में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा एलिजाबेथ रोज कुबलेर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। 1187 ऐसे आत्माओं के भूतकाल में उनको हिप्नोटिक रिग्रेशन और हिप्नोटिक प्रोग्रेशन के आधार पर इनके अनुभव के आधार पर लिखा हुआ है। विज्ञान के और साइकोलॉजी आदि के क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा काम हुआ है, बाबा के ज्ञान को इन्होंने बहुत अच्छी रीत से सिद्ध किया हुआ है। अभी तक मन जो है माइंड और ब्रेन को एक मानते थे, आज के विज्ञान ने सिद्ध कर दिया ब्रेन जो है वो फिजिकल है और माइंड है वो सटल है। इस प्रकार से कई बातें सिद्ध कर दी है बाबा का ज्ञान, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करने का बहुत कुछ अच्छी रीत से प्रयत्न हो रहा है। तो इस प्रकार से बाबा के ज्ञान को अंतिम समय में दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने का क्या विधि होगा और कैसे हम अपना भविष्य उस टाइम पर सर्वश्रेष्ठ बना सके, ऐसी कौन सी विधि होगी, उसके लिए हमको तैयारी करनी होगी। और इसलिए मैंने आपको बताया। और उनके बाद भी एक दूसरे प्रश्न है, जिस प्रश्न के लिए मैं समझता हूं हमारे दैवी परिवार में बहुत कम लोग उसके लिए जागरूक हैं। विनाश के बाद आप सब जानते हैं नए दुनिया का कारोबार किसको बाबा देंगे, विनाश के बाद नई सृष्टि का कारोबार किसको देंगे बाबा? हम बच्चों को ही देंगे ना, और किसी को तो, और कोई धर्म नेता है या और कोई धर्म तो आने वाले नहीं है। हम उस कारोबार के लिए तैयार हैं और वो कारोबार कैसा होना चाहिए इसके लिए बाबा ने कंडीशन डाली हुई है कि 2500 वर्ष तक अखंड अटल निर्विघ्न वो कारोबार होना चाहिए। ऐसे कारोबार करने के लिए हम तैयार है, हम संपूर्ण तो बन जाए, परंतु संपूर्ण बन करके संपूर्ण श्रेष्ठ दुनिया का कारोबार करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास वो चेतना को हो, जागृति को हो, हमारे पास है। संपूर्ण बनना एक बात है और संपूर्ण दुनिया का संपूर्ण कारोबार श्रेष्ठ रिश्ते चलाना वो दूसरी बात है। इसकी भी ट्रेनिंग बाबा दे रहे हैं कि अगर ये अनुभव नहीं होगा ना, ट्रेनिंग नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। उस टाइम पर आप फंक हो जाएंगे। मैं अपना ही अनुभव बताऊं, पहले मुझे मालूम नहीं था कि मकानों का कैसे कारोबार करना चाहिए, सेंटरों के खोलने के लिए कैसे कारोबार करना चाहिए। तो मॉरिशियस में अपने लुसाका से बहन भाई गए हुए थे और वहां एक हफ्ता तक रहे, बहुत अच्छी सेवाएं किया, और एक हफ्ते के बाद उनको वापस लुसाका जाना था। यहाँ लुसाका जाए या मॉरिशियस में इस सेवा केंद्र की स्थापना करके जाए, तो उन्होंने नक्की किया। उनको एक मकान मिल रहा था, शाम को मकान मिल रहा था, इन्होंने हमको रात को फोन किया मॉरिशियस से। रात को 12 बजे हमारे पास फोन आया, क्योंकि उस मॉरिशियस तो 2 घंटा पीछे है, माना बॉम्बे का 12 बजे वहां का 10 बजा हुआ था। तो वहां के वेदांती बहन राम भाई इन सब ने फोन किया और कहा कि हमारा हवाई जहाज लुसाका के वापस जाने की टिकट कल सुबह की है, हम वापस जाए या मॉरिशियस में सेवा केंद्र खोल के जाए, आप बताओ, आप छुट्टी दो। मैं सचमुच बताऊं, मैं जो है ना, जैसे अर्जुन जो है ना भीष्म पितामह आदि को देखते हुए ठंडा हो गया ना, इस प्रकार से मैं भी ठंडा हो गया। मैंने कहा भाई साहब ये मैं नहीं कर सकता हूं निर्णय, ये तो हमारी दादियां करेंगी या बाबा करते हैं। राम भाई वेदांती बहन ने हमको कहा कि रमेश भाई, बाबा तक जाने का या दादियों तक जाने का हमारे पास समय नहीं है। आपके पास हिंदुस्तान में 12 बज गए हैं, हमारे यहाँ 10 बजे है, कल सुबह यहाँ के टाइम से 6 बजे हमारा हवाई जहाज वापस जाने का है। आप हाँ बोलो या ना बोलो, आप हाँ बोलो कि भले सेंटर खोलो तो हम यहाँ रुक जाएंगे, टिकटें कैंसिल करते हैं और सेंटर खोल देंगे, आप ना बोलेंगे हम कल सुबह चले जाएंगे। मैंने कहा ये तो मुसीबत है मेरे लिए, मुझे तो इसका अनुभव नहीं है, सेंटर खोलने की हाँ कहूं या ना कहूं मुझे इसका अनुभव नहीं है। मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी भारी परीक्षा है, मुझे इसका अनुभव नहीं है हाँ या ना कहने के लिए। तो मैंने बाबा को याद करके उनको कहा भले आप हाँ कह दो, आप हाँ कर दो, मैं 2 दिन के बाद मधुबन जाने वाला हूँ, बाबा आने वाले हैं, मैं बाबा से पूछ लूंगा। कहा कुछ नहीं हो सकेगा, बाद में बाबा के नहीं खोलना है तो भी ऐसा नहीं हो सकेगा, हम यहाँ पर उसके लिए 5 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, 5 साल तक वो मकान हम छोड़ नहीं सकेंगे। बाबा बाद में कहे कि मकान नहीं लेना था, सेंटर नहीं खोलना था, हम नहीं कर सकेंगे, आप अभी ही कह दो। हमने कहा ठीक है आप खोल दो। और 2 दिन के बाद मैं मधुबन आया, बाबा को कहा बाबा मैं कान पकड़ता हूँ, मैंने बहुत बड़ी भारी गलती किया है, ना आपसे पूछा है ना दादियों से पूछा है, और मैंने मॉरिशियस के लिए हाँ कह दिया। तो बाबा ने कहा कि किसने हाँ किया, तो बाप मैंने कहा मैंने हाँ कहा। फिर बाबा ने पूछा किसने हाँ कहा, फिर मैंने कहा। फिर बाबा ने तीसरी बार पूछा कि किसने हाँ कहा, मैंने कहा बाबा जहां तक मैं समझता हूँ मैंने किया। बाबा ने कहा तुम्हारी यही तो गलती है, तुम्हारे द्वारा बाबा ने हाँ कही थी, तुम्हारे द्वारा बाबा ने हाँ की, तुमको अनुभव दिलाना था कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब जब बाबा को दादियों को किसी को आप नहीं पूछ सकेंगे, तब अपने आप अपने पांव पर खड़े रह करके ऐसे कारोबार के निर्णय आप कर सको। इसके ट्रेनिंग देने के लिए बाबा ने आपके सामने ये परीक्षा रखी और इसलिए आपके सामने ये रखी और आप उसमें पास हो गए, आपने हाँ कह दिया, बाबा ने ही कराया। तो इस प्रकार से ऐसी जो नए दुनिया की कारोबार होंगे ना, उस कारोबार को संभालने के लिए हम तैयार है। बहुत समय पहले हमने ज्ञानामृत में एक आर्टिकल में लिखा था कि जब भारत आजाद हुआ और नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए, वल्लभ भाई पटेल जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए और मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर बन गए आदि आदि, परंतु उस टाइम पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है तब तक जो है भारत के वायसराय के रूप में चालू थे। और भारत आजाद हुआ उसके बाद हिंदुस्तान मुस्लिम हिंदू व मुसलमानों का झगड़ा बहुत बढ़ गया काफी हद तक जो इसको रायट कहते हैं उस प्रकार से रायट्स बहुत हो गए हिंदू मुसलमान के बीच के और सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। रविवार का दिन था, रविवार के दिन नेहरू जी ने इमरजेंसी की कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसके सामने रखा रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री का कि हाँ सारे हिंदुस्तान में घी दूध की नदियां के बदली में खून की नदियां रक्त की नदियां बह रही है और सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो नेहरू ने ही प्रस्ताव रखा उस कैबिनेट मीटिंग में कि हम सारा ही कारोबार समेट ले और सारा ही कारोबार लॉर्ड माउंटबेटन को दे दें क्योंकि उनके पास अनुभव है, ऐसी परिस्थितियां जो विकट परिस्थितियां आएंगी उसका सामना करने का उनको अनुभव है। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और शाम को 4 बजे लॉर्ड माउंटबेटन के पास वो सब गए और इन्होंने वो रेजोल्यूशन दे दिया कि हम सारा ही सत्ता के सर्वसूत्र सत्ता के सारे ही पावर्स जो भी है वो हम आपको देते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आप शांति स्थापन करके दिखाओ। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा अभी मेरे हाथ में तो कोई सत्ता नहीं है, आप ही आपके ही हाथ में आपके देश का सभी सत्ता के सूत्र है, आप संभालो आप करो। नेहरू ने कहा कि हमको इस प्रकार की ऐसी परिस्थितियों का सामना करने का कोई अनुभव नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा क्या हुआ क्यों नहीं अनुभव, कहा हम तो आजादी का युद्ध करने में ही बिजी थे, आपके देश के जो सत्ता हमारे पास उसको निकालने में ही हम बिजी रहे, कई साल तो हमने जेलों में बिताए, हमको भारत आजाद हो जाए उसके बाद का कारोबार करने का कोई अनुभव नहीं है और आपको है क्योंकि जो जापान के सामने जो युद्ध चला था ना उस सारे ही दुनिया के जो भी सेनापति आदि थे उन सबका कमांडर इन चीफ लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो कहा कि आपको तो ऐसे युद्ध करने का अनुभव है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान के सामने आप सर सेनापति रहे थे, तो आप ये बात को संभालो। और लॉर्ड माउंटबेटन ने संभाला और 5 दिन में हिंदुस्तान में शांति हो गई। इसी प्रकार से सारी दुनिया का कारोबार शिव बाबा हमारे हाथ में सौंपने लिए तैयार हो और उस टाइम पर बाबा को हम कहे बाबा हमको नई दुनिया का कारोबार संभालने के लिए हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, क्यों? क्योंकि हम माया के सामने युद्ध करने में और अपने आप को संपूर्ण बनाने में ही हमारा समय गया, हम नई दुनिया के कारोबार को संभालने के लिए असमर्थ है तो क्या होगा, बाबा के लिए समस्या हो जाएंगी क्योंकि बाबा खुद तो सतयुग में आ नहीं सकता है और कोई धर्म नेताएं भी नहीं आ सकते और हम अगर लायक नहीं होंगे तो क्या होगा, इसलिए ये भी एक समस्या है, इसके भी समाधान हमको करना होगा कि नई दुनिया का कारोबार हमारे हाथ में आए तो हम उसको संभालने के लिए तैयार है, उसका अनुभव है हमारे पास। आर वी रेडी? आपको आज बताओ जो किसी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दे, प्राइम मिनिस्टर बनकर के उस कारोबार को संभालने के लिए हम तैयार है? तो इस प्रकार से नई दुनिया का कारोबार संभालने के लिए उसके अनुभव के लिए उसके विधि विधान को जानने के लिए और उस प्रकार से अपने में वो संस्कार भरने के लिए हम तैयार है। आर वी रेडी कि आपके हाथ में नई दुनिया का, आप 8 के लिस्ट में आ जाओ और नई दुनिया का कारोबार आपके हाथ में आ जाए, आप उस कारोबार को संभालने के लिए तैयार है? आपकी छोटी बड़ी जो भी राजधानी होंगी उस राजधानी में आपके पास तो कोई वजीर नहीं होगा, बाबा ने बोला हुआ है आपके पास कोई वजीर नहीं होगा, आपको ही सारा कारोबार A to Z सारा ही कारोबार आपको संभालना है, तब आप क्या करेंगे? सोचिए इस प्रकार से, इस परिस्थिति के लिए मैं आपको सच बताऊं 95% क्या ज्यादा भाई बहने तैयार नहीं है कि नई दुनिया के, हमने प्रजा तो बना दिया, प्रजा बनने के बाद उसके ऊपर श्रेष्ठ में श्रेष्ठ राज्य कारोबार करें उसके लिए हम तैयार हैं। एक छोटा परिवार भी संभाल नहीं सकते हैं, उस परिवार के अंदर भी रोज झगड़े होते हैं, क्या क्या होता है, एक छोटा सा धंधा भी संभाल नहीं सकते हैं, वो सारा जो भी अपना राज्य कारोबार होगा वो कहां से संभालेंगे, प्रश्न है ये सारा, सोचिए इसके ऊपर। और इसलिए स्पार्क के अंदर जो है ना, अभी तक तो हमने मनसा सेवा का किया उसके बारे में किताब भी बनाई है, बहुत अच्छी किताब बनी हुई है। 2-4 दिन पहले ही हमको एक भाई ने कहा कि मनसा सेवा की ये किताब जो है ना जैसे कि गीता है, गीता है ना, गीता में सब कुछ मार्गदर्शन मिल जाता है। इस प्रकार से मनसा सेवा की यह गीता है। इस प्रकार से और भी कोई सेवा का प्रोग्राम बना करके सेवा में मददगार बने ऐसे कारोबार कीजिए। तो हम अभी ये अगली मीटिंग जो होगी उसमें ये नक्की करने वाले हैं कि अंतिम समय की जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी परिस्थितियां आएंगी, उसका विधि विधान और अंतिम समय की सेवाएं क्या होगी, उसके बारे में स्पार्क में हम रिसर्च करने वाले हैं, उसकी किताब भी बनाएंगे। परंतु उसके पहले आप सबके सामने ये क्लास रखा हुआ है, तो आप सबके सामने ये बातें रखी है। आप सोचना, मैंने जो कहा है उसमें कोई मेरी गलतियां तो मेरी गलतियों को बताइए, या आपके पास कोई सुझाव हो कि अंतिम समय की सेवाएं कैसे होगी, कैसा कारोबार होगा, और अंतिम समय के बाद नई दुनिया के कारोबार के लिए भी विधि विधान क्या होना चाहिए, ताकि बाबा हमको दे दे सारे विश्व का कारोबार और हम उस परीक्षा में भी सफल हो। इस प्रकार मैंने एक बार अव्यक्त बाप दादा को कहा था, बाबा आप तो सत्युग त्रेता में तो मिलेंगे नहीं, परमात्मा क्रिश्चियनिटी में ऐसा नियम है कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन 1 दिन आराम किया। हमने कहा बाबा यहाँ तो आप नई दुनिया बना करके 2500 वर्ष तक आराम करेंगे, आएंगे नहीं, मदद नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2500 वर्ष तक हमारा कारोबार हमें ही संभालना होगा, आपकी तो मदद मिलने वाली नहीं है। तो बाबा ने कहा कि मैं सत्युग में आकर के क्या करूंगा, वहां क्या मुरली सुनाऊं फिर से आकर के, क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, अगर मेरा कोई काम ही नहीं है, इसलिए मैं सत्युग में नहीं आता हूं, मैं ऊपर मौज से रहूंगा। हमने कहा बाबा आप मौज से रहो और हमको यहाँ दुनिया में भेज दो, कहा ये भी मौज करेंगे ना आप राज्य कारोबार करेंगे। तो ऐसे अव्यक्त बाप दादा बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत बता रहा है। हम अगर तैयार हो ना तो बाबा हमको हर प्रकार की बातों के लिए, हर समस्या के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार है। फक्त एक ही बात है, हमें निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाबा सबको समान अपॉर्चुनिटी तक देते हैं, अपॉर्चुनिटी देता है, परंतु आगे बढ़ने के समय पर कई लोग जो है ना गुजराती में कहते हैं लक्ष्मी तिलक करने को आते हैं ना, तो कई लोग मुख धोने को चले जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज डू नॉट रिपीट। बाबा जितने भी यहां बैठे हुए हैं सबको समान तक दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो कई बहन भाई ऐसे हैं ना, वो आगे बढ़ने के समय में वर्तमान की समस्याओं से भी ऊपर नहीं आते, वर्तमान की अपनी घर की, अपने कारोबार की, अपने दुनिया की जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं में ही इतना समय, दिन का 20 घंटा उसमें ही चला जाता है। फिर कहां से ईश्वरीय सेवा या अपना सौभाग्य बनाने के लिए टाइम होगा, कहां से नई दुनिया के कारोबार के लिए समय होगा, कहां से अंतिम समय की तैयारियों के लिए, उस समय की सेवाओं के बारे में जागृत होकर के पुरुषार्थ करें। वर्तमान की समस्याओं से ही इतने परेशान हैं, हर एक अपने दिल से पूछे, अपने व्यक्तिगत जीवन से पूछिए कि क्या हम वर्तमान की समस्याओं से उसमें फ्री है, उनसे निर्बंधन है, अपने अपने परिवार का, अपने कारोबार का, अपने नौकरियों का, अपने धंधों का, जो भी है। मैं पहले समझता था कि धंधे वाले ज्यादा फ्री होंगे, और अनुभव से ये मालूम पड़ा कि धंधे वाले ज्यादा बिजी है। नौकरी वाले को तो साल में 1 मास छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी ले सकते हैं, धंधे करने वाला 2 दिन के लिए भी छूटना होता है ना, तो छूट नहीं सकते, सारा दिन धंधा 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 ही याद आता है। घर का भी कारोबार ऐसा ही होता है, हमने समझा कि माताओं को बच्चे याद आएंगे, और बच्चे के घर में बच्चे हो जाएंगे तो माताएं फ्री हो जाएंगी, मतलब अनुभव से मालूम पड़ा कि बच्चे माताओं को पोतरा ज्यादा याद आता है बच्चों से भी, ये हकीकत है, पोतरे ज्यादा याद आते हैं। जितना हम फ्री होना चाहे ना, बाबा भी फ्री करना चाहे, हम और ही अपने आप को लौकिक दुनिया की कारोबार की जंजाल में ज्यादा के ज्यादा ही फंसते जा रहे हैं, और इसलिए नई दुनिया के लिए और विनाश के समय की तैयारी के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। ये करुण वास्तविकता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप माफ कर देना, मैं अगर गलत हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं नहीं फिर भी मैं आपको मेरी हम्बलनेस बताता हूँ कि मैं अगर गलत हूँ तो अच्छा है बता दीजिए, बाकी मैं आपको बताऊँ 95% बहन भाई जो है वर्तमान की समस्याओं से ऊपर आते ही नहीं है, ऊपर उठते ही नहीं है, और इसके कारण आगे चलने की बात जो है, बहन जी ने भी आपको कहा, रानी बहन ने मेरे लिए कहा कि 62 से ज्ञान में चलते हैं, तब मुझे हंसी आई, क्योंकि एक बार एक मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने कह दिया है कि चलने वाले जो है, चलती कला वाले जो है ना, समय तक या समय से पहले भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे, उनके लिए टू लेट, बहुत देरी हो गई और बोर्ड लग गया है, अब समय तक या समय से पहले संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य जो है, इन सब बातों का उसके लिए वो ही कर सकेंगे जो उड़ती कला या दौड़ती कला वाले होंगे। हम अपने पुरुषार्थ की रफ्तार अगर नहीं बढ़ेंगे ना, तो माफ करना बाबा की ये मुरली आप हम सब के लिए सिद्ध हो जाएंगी कि हम संपूर्ण समय से पहले या समय तक नहीं होंगे। कल्पांत का दो अर्थ होता है, एक कल्प का अंत और दूसरा कल्पांत माना रोना। ऐसा न हो जाए कल्पांत के समय पर हमको कल्पांत करना पड़े, रोना पड़े कि बाबा हमने चाहा था बहुत परंतु कर नहीं पाए, ये शब्द हमारे मुख से न निकले, ऐसी ही मेरी आप सबको विनंती है। और इसलिए जितना हो सके इतना जल्दी से जल्दी तीव्र पुरुषार्थ करके उड़ती कला या दौड़ती कला में पहुंच करके हम सब ऐसा पुरुषार्थ करें ताकि अंतिम समय की जो भी परीक्षाएं जो भी हैं, जो भी समस्याएं जो है, और उसके बाद आने वाली दुनिया के भी कारोबार के लिए जो भी तैयारियां हैं, इन सब के लिए अपने आप को तैयार करें। और इसके बारे में आपके कोई भी सुझाव हो तो हमको लिखेंगे तो हम स्पार्क की अगली मीटिंग में, और जिनों को भी अपने सेवा केंद्रों पर भी इस प्रकार इस बात के लिए आपस में स्टडी सर्कल या लोकल चैप्टर्स बना करके कारोबार करना है, क्योंकि इसके लिए जितना हमारे पास साहित्य होना चाहिए इतना हमारे लिटरेचर डिपार्टमेंट आदि से नहीं है, अब इसकी तैयारियां करनी चाहिए, इसके लिए हमारे बहन भाइयों को उसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, आने वाले समय के लिए विनाश के बाद में अंतिम समय की सेवाओं के लिए क्या होना चाहिए उसकी तैयारियां करनी चाहिए, यह अंतिम समय की समस्याओं के का सामना करने की विधि क्या है उसकी तैयारियां क्या करनी चाहिए, उस प्रकार की बातों को हमको सिखाना चाहिए। मैंने कहा ये तो हम नक्की करेंगे, हो जाएगा, बाबा बताते रहेंगे, मतलब इस प्रकार से आप सबके भी सामने यही रखता हूँ कि आप सब यहाँ आए हुए हैं तो इतने जागरूक हो जाओ, इतने तैयार हो जाओ कि हमें अंतिम समय में रोना न पड़े, और अंतिम समय बाबा को कहे हाँ बाबा कल क्या आज विनाश आ जाए, हम तैयार हैं, उसके बाद नई दुनिया की जो भी कारोबार हमको आप दो हम संभालने के लिए एवर रेडी का अर्थ तो यह नहीं है कि विनाश के लिए एवर रेडी है, एवर रेडी का अर्थ तो यह भी है कि आने वाली नई दुनिया का कोई भी का प्रकार की जिम्मेदारी बाबा दे उसको संभालने के लिए भी हम एवर रेडी है। हाँ ये दो प्रश्न है कि विनाश के समय के लिए हम एवर रेडी है या नहीं, और उसके बाद आने वाली दुनिया के लिए भी हम एवर रेडी है या नहीं, ये प्रश्न है, इसकी तैयारियां करनी चाहिए। हाँ बाबा तो बैठा ही हुआ है, मददगार है ही है, तो साथ साथ ये भी बात है। हाँ बाबा ने कह दिया है हाँ जो करेगा सो पाएगा, बराबर है ना, जो करेगा सो पाएगा, ऐसा भी नहीं है कि जो कहेगा सो पाएगा, ऐसा नहीं है, जो करेगा हाँ सो पाएगा। हाँ मेरी तो इसलिए बाबा के सामने ये अर्जी है कि हम सब हाँ सफल हो जाए। हाँ बाबा आपको आठ की जो दाना माला है ना उसके दाना जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा कि 16108 को पहले कर दो। हाँ हम सब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जो आठ के बदली में 16108 की माला में हम आ जाए, 16108 ही संपूर्ण की माला बन जाए, सिर्फ आठ की नहीं, ऐसा हम पुरुषार्थ करें और ऐसा हम बाबा से बाबा के बच्चे लायक बने, यही शुभेच्छा है आप सबका। फिर से बहुत धन्यवाद, बाबा को एक मिनट याद करेंगे।